आपके साथ भी हो सकता है।
देखो अजीजम, मैं कल रात के लिए अभी से कैसे वादा कर सकता हूँ? ये कैसे रिश्ते की बात हुई? क्या मुझे जुए शीर लाना होगा तुमसे शादी करने के लिए? एक मिनट, होल्ड करो, होल्ड करो। हेलो पुलिस, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं तुम्हारी कसम, मैं रोजे से हूं। अच्छी लड़की, क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? देखो मुझे यकीन नहीं है कि अम्मी अब्बा कल आ पाएंगे। अच्छा, ये जो विलायत से आपके मामू जान तशरीफ लाए हैं, अगर उन्होंने हमें कल ओके कर दिया तो फिर सब कुछ खत्म है ना? अच्छी बात है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी घर फोन करके तुम्हें बताता हूँ। हाँ अजीजा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हारी कसम पूरी कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। खाने भी नहीं देती। हेलो सोहरा भी रास्ते में हूँ, बस आ ही रहा हूँ, 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हूँ। कहाँ ट्रैफिक नहीं है, तुम कहाँ से आए हो? हाँ मुदर्रिस हाईवे। हाँ लेकिन नहीं नहीं, मैं सदर पर हूँ, यहाँ तो कयामत आई है, 8-10 गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा गई हैं, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ ही हैं, लाशें सड़क के किनारे यूं ही रख दी गई हैं। अरे उनसे कह दो ट्रैफिक में फंस गया हूँ। तुम्हें अगर यकीन ना आए तो टीवी पर न्यूज़ देख लो, कई रिपोर्टर भी यहाँ पहुँच गए हैं। अगर पुलिस ने सड़क खोल दी तो मैं 1/2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, वरना मेरे बगैर ही मीटिंग शुरू कर दो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, नीचे उतर के गाड़ियाँ सड़क से हटाऊँ? एक बच्चा लाश के पास खड़ा रो रहा है, लगता है उसकी माँ की लाश है। हाय हाय, कलेजा फट रहा है। हाय 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 हाय, मेरी तबीयत खराब हो रही है। सोरा भी यार, देखो मुझे इस जन्म से निकलने तो, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ओफो, एक मिनट भी चैन का सांस नहीं लेने देते। अरे लाना तो मोबाइल बनाने वाने पर, वबाले जान बन गया है। हेलो डियर यासी, ये तो ठीक नहीं है, तुम्हें मुझ पर जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं है। इस तरह से मेरी बीवी बनोगी? हाँ नहीं हो सकता। इस तरह सफेद दुल्हन के कपड़े में मेरे घर आना और फिर सफेद कफन में जाना चाहती हो? जी नहीं 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 हो सकता। हाँ अभी मैंने अम्मी से बात की, देखो कल 40-50 लोग इफ्तार पर मेहमान थे हमारे यहाँ, सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया सिर्फ अपनी खूबसूरत बहू के लिए। हाँ भाई, वो अभी से अपनी बहू के दिल में उतरने की कोशिश कर रही है। देखो यासी, अपने अब्बा से बात कर लेना तुम अपने तरीके से, कल कहीं मेरे अब्बा के सामने जहेज के सामान के बजाय घर के लिए जो पैसे देने हैं उसकी बात शुरू ना कर दें। हाँ जानता हूँ कि अभी यकीनी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हारे घर वालों के इम्तिहान में पास हो जाऊँ और इस घर का दामाद बन जाऊँ। देखो अगर मेरे अब्बा को पता भी चल गया कि तुम जहेज के बदले कैश पैसे ले रही हो अपने अब्बा से, तो वो मेरा गला काट देंगे। अपना ख्याल रखना, बाय।
जाए तुम पर, क्या खा रहे हो तुम?
सैंडविच। सुने जवाब साहब, सुने सुने सुने,
ये मेरी और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम लम्हा है। हम इस लम्हे में दो रूहों की तरह हैं, मतलब एक रूह एक जान की तरह है, एक जान दो जिस्म।
वो कैसे?
असल में मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम राज तुम्हें बताने चाह रहा हूँ।
वो कैसे?
क्योंकि आपने मुझे एक राज के साथ देखा है जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है।
वो कैसे?
इतना वो कैसे ना करो, सुनो सुनो गौर से सुनो। ऐसा कभी ना सोचना कि वो लोग जो ऊपर रोजे से हैं मैं उनकी वजह से यहाँ नीचे आ रहा हूँ खा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके इसके बरअक्स है।
वो कैसे?
मैं यहाँ तहखाने में आया हूँ, इस तहखाने में जो गर्द गुबार से और आलूदगियों से भरा है, जानते हो क्यों? ताकि अपने जख्मों पर मरहम रख सकूं।
वो कैसे?
अब कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं? असल में बात यह है कि मेरे मेदे में कैंसर है। लेकिन ऊपर किसी को पता ना चले
हैं? वो कैसे?
मैंने अपने दोस्तों को इसकी खबर नहीं होने दी है, खुद को सजा दे रहा हूं ताकि वो लोग खुश रहे, परेशान ना हो, समझे? समझ में आया ना?
वो कैसे?
देखो किसी को ये पता ना चलने पाए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था।
वो कैसे?
इस तरह से। ये लिफ्ट हमेशा क्यों खराब रहती है?
हर एक में कोई ना कोई कमी होती है, इस इमारत की कमी इसकी लिफ्ट है।
अच्छा
इंजीनियर साहब, असल में मैं एक तो आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करने आया था और फिर ये पूछना चाहता था कि वो जो दवाएं लिखवानी थी आपके अब्बा हुजूर से, उसका क्या हुआ? सैंडविच, सजा, ये सब ऊपर वाले से। मैं कह दूंगा।
अच्छा ऐसी बात है, उन्होंने दवाएं तो लिख दी हैं, मैं सुबह घर से निकलते वक्त लाना भूल गया, सब कुछ इंश्योरेंस के खाते में जाएगा, बड़ा जबरदस्त नुस्खा लिखा है, गोलियां, सिरप, दवाएं, क्रीम्स, बुढ़ापे के लिए, धूप के लिए, इतनी दवाएं लिख दी हैं कि तुम भी इस्तेमाल करोगी, तुम्हारी बीवी भी और वो बेटी भी जिसकी शादी करने वाले हो तुम।
मेरी तो शादी के लायक कोई बेटी नहीं है।
अरे तो वो कौन था जिसे उस दिन मैंने देखा था?
अच्छा वो तो मेरा बेटा है, अभी फौज की जरूरी सर्विस खत्म करके आया है, मैं इंशाल्लाह उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। अच्छा ये बताएं आपके रिश्तेदारों में कोई अच्छी सी लड़की नहीं है शादी के लिए?
शादी के लिए अच्छी लड़की तो हमारे खानदान में नहीं है, लेकिन वो सोराबी जो है ना कंपनी का मालिक,
हाँ
वो अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढ रहा है।
क्या उसकी बहन में कोई कमी वगैरह है?
ये तो नहीं मालूम, लेकिन चाहे जो कमी भी हो भाई, आखिर सोराबी की बहन है। आपका लड़का एक निकाह के बाद वॉचमैन रूम से सीधे सातवीं मंजिल पर बॉस की कुर्सी तक पहुंच जाएगा।
वाह 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 हुसैन बेटे,
अब देखता हूँ कैसे कहते हो वो कैसे वो कैसे। तुम जबरदस्त हो, बेमिसाल, सबको ऐसा चक्कर देते हो कि उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं होती, क्योंकि तुम हुसैन पारसा हो, एक गैर मामूली जहीन आदमी, जहीन। तुम हर एक को उल्लू बना सकते हो।
हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था?
हाँ तुम्हारी कसम, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, रोजा रख के झूठ नहीं बोलूंगा।
अच्छा वो फाइल दो मुझे, मैं एक घंटे से लोगों को चक्कर दे रहा हूँ।
फाइल?
देखो अब ये ना कहना कि इस पर काम नहीं किया।
आज यहाँ पुलिस का फोन नहीं आया था?
पुलिस का फोन किसके लिए?
किस लिए? आज मैं लेट क्यों हुआ? तुमसे क्यों ये कहा कि सदर हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। नहीं भाई, ना एक्सीडेंट हुआ था ना ही ट्रैफिक था, कुछ नहीं था। जब तुमने फोन किया तो मैं पुलिस स्टेशन में था, सुबह पार्किंग का दरवाजा बंद कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी आया और मेरा बैग छीनकर भाग गया, सब कुछ लेकर चला गया मेरा सब कुछ।
झूठ तो नहीं बोल रहे हो?
मेरे पूरे बदन पर नील पड़े हुए हैं, क्यों झूठ बोलूंगा?
क्या क्या था उसमें?
सब कुछ था, ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड, 1.5 लाख तूमान, जो भी था सब कुछ ले गया।
मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए?
नहीं, तुम क्या करोगे, जो होना था वो हो गया।
ठीक है, मैं अकेले मीटिंग अटेंड करता हूँ, तुम कुछ ना करो, बस उनके सामने मत आना। अच्छा, कोई काम होगा तो तकलीफ ना करना। पैसे चाहिए?
नहीं, पैसे हैं, शुक्रिया।
अरे हाँ, एक नए क्लाइंट ने फोन किया था, वो एडवाइस देना चाहता है कि इसका काम कर सकते हो।
हाँ, क्यों नहीं।
देखो, वो जर्मनी से आया है, यहाँ कंपनी डालना चाह रहा है, माल बहुत है इसके पास, और हमसे एडवाइस देना चाह रहा है।
ठीक है, मुतमईन रहो,
मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस जहनी परेशानी के साथ तुम इसे हैंडल कर लोगे?
मैं हर तरह से इस कंपनी की खिदमत के लिए तैयार हूँ।
मैं हमेशा याद रखूंगा।
हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ना? अब्बा क्लिनिक गए? ठीक है, कुछ नहीं, बस मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि शादी का इरादा छोड़ दिया। क्यों? बहुत सी वजह हैं, आप खुद ही सोचें। यासी ने फोन करके कल हमें अपने घर बुलाया है, क्योंकि उसके मामू विलायत से आए हैं, जो हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि कहीं कोई कमी वमी तो नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि इकलौती है, शादी के सिलसिले में घर वाले हसास होंगे, ठीक है, लेकिन ये सुने अम्मी, यासी मुझसे कह रही थी कि ये उसके जो मामू हैं, चूंकि बाहर रहते हैं इसलिए बड़े हाई फाई हैं, इसलिए जब कल रात मेरे घर आना तो ब्रांडेड सूट पहन कर आना। अब आप ही बताएं, ऐसी बीवी का मैं क्या करूंगा? ये जब अभी से इस तरह की बातें सुने, मैं क्या कह रहा हूं, आप तो अपनी ही बात कहे जा रही हैं। मैंने तो उससे कह दिया कि कल रात हम नहीं आ रहे हैं। क्यों? ब्रांडेड सूट के पैसे नहीं है मेरे पास। मैं अब्बा से कैसे पैसे मांगूं? मैंने आज तक अब्बा से पैसा मांगा है जो आज मांगूं? ठीक है, आप कह दीजिए। तो फिर आप कह रही हैं ना, कितनी अच्छी हैं आप हैं। देखिए अम्मी जान, मैं सिर्फ आपके लिए शादी करना हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत खुशामदीद, हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। देखिए, ये जगह हमने सिर्फ गैर मुल्की मेहमानों के लिए मखसूस कर रखी है।
श्योर। तो पारसा साहब, इंजीनियर साहब ने मेरे बारे में तो आपको बताया ही होगा।
जी, आप हुक्म करें, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ?
आप रोजे से हैं?
क्यों?
मैं ये जानना चाहता था कि यहाँ सिगरेट पी जा सकती है।
जी जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल।
और आप? आप भी सिगरेट पीते हैं?
मैं तो 16 साल की उम्र से सिगरेट पीता हूँ, एक दिन में 2 पैकेट तो हो ही जाते हैं, इसलिए रोजा नहीं रखता। इंजीनियर साहब, सिगरेट बहुत बुरी बला है, आरी की तरह होती है, पियो तो नुकसान, छोड़ दो तो भी नुकसान, जो चाहे कर लें, मौत के बाद ही छुटकारा मिलता है।
आपके घर वाले, उन्हें कोई इतराज नहीं सिगरेट पीने पर?
अरे इंजीनियर साहब, कौन से घर वाले, 10 बरस का था तो वालिद साहब का कत्ल हो गया घरेलू झगड़े में, बहुत पैसे वाले थे, मस्त मौला आदमी, खूब खर्च करते थे। 1 साल के बाद उनके गम में अम्मी भी चल बसी, चाचा ने जो हालात मुनासिब देखे तो सारी दौलत हड़प कर ली, सब कुछ छीन लिया। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कैसा आदमी हूँ। आज मैं जहाँ हूँ अपनी मेहनत से हूँ, न बाप की दौलत थी और ना ही कोई गॉडफादर था, लेकिन इन लोगों को ये सब कुछ नहीं मालूम है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि न जाने क्यों आपसे कुर्बत महसूस हो रही है।
दिलचस्प है, हैरत अंगेज है, मैं भी आप ही जैसे हालात में पला बढ़ा हूँ पारसा साहब।
जाहिर सी बात है, आमतौर से हमारे जैसे लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं।
ओह, माफ करिएगा, मैंने आपको तल्ख माजी याद दिला दिया।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपने तो मुझे वो बातें याद दिलाई जिन पर मुझे फख्र है, ऐसी यादें जो ये बताती हैं कि मैं कैसे मैं बना।
आपने शादी की है?
अब क्या बताऊं जनाब आपको, इस मामले में भी बदकिस्मत ही ठहरा। शादी तो की, लेकिन 2 साल से ज्यादा कायम नहीं रह सकी। मेरी बीवी आराम के बहाने यूरोप गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। मेरा बेटा उस वक्त 2 बरस का था। बाद में मेरी बीवी ने एक फैक्स भेज दिया जो दरअसल तलाकनामा था, सब खत्म हो गया। इन हालात में मैंने तरक्की की है बहरंग साहब, इस दुनिया में कोई भी हमदर्द नहीं था हमारा जनाब, अपने जख्मों पर हमने खुद ही मरहम रखे हैं, जख्म खा खा के तजर्बात हासिल किए हैं बहरंग साहब।
इन हालात में तो फौलाद भी पिघल जाता है।
हाँ, लेकिन हम इतनी बार पिघले के पिघलने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। खैर अब कुछ काम की बात हो जाए।
हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले सिगरेट। और लाइटर।
खुदाफिज सराबी साहब। खुदाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। कायदी साहब तो फिर कल मीटिंग पक्की है ना?
जी जी मैं तैयार हूँ।
ये आपका लुत्फ है जनाब।
बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह सोहराबी साहब,
क्या हाल है?
शुक्रिया सोहराबी साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए बारसा साहब की सोहबत बहुत लुत्फंदोज रही, तो इसलिए मैं जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा।
जी हाँ उस मुहिदे के लिए ना।
हाँ बिल्कुल। खुदा हाफिज।
आपका शुक्रिया।
खुदा हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज। कैदी साहब अपने दोस्तों के साथ निकल रहे थे, मैंने उनसे कहा था कि तुम अस्पताल में हो। मैंने तुमको मना नहीं किया था उनके सामने बताना, अगर देख लेते तो मेरी इज्जत खराब हो जाती। बहन को ऊपर लेके क्यों आए थे? वही नीचे से बात कर लेते।
अरे यहाँ ज्यादा अच्छा था, इस हिस्से को उल्लू बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है।
ये सब बातें छोड़ो, मुआहदे का क्या बना?
ऐसा चक्कर चलाया है कि मेरा मुरीद हो गया है।
कैसा चक्कर चलाया?
चक्कर और क्या
ऐसा। देखो जल्द चेक करो, लेकिन खुदा के लिए मुझे चक्कर देने की कोशिश मत करना।
कितने वर्षों से मुझे जानते हो?
10 वर्ष से।
कितनी बार रंगे हाथ पकड़ा?
कभी नहीं।
अरे भाई मैं तो तुम्हें चक्कर देता ही नहीं, तुम मेरे बॉस भी हो और दोस्त भी, दोस्त को दोस्त चक्कर देता नहीं।
खुदा करे ऐसे ही हो।
अरे मेरी मोबाइल की बेल है, लगता है पुलिस स्टेशन से। अरे वाह मेरा बैग मिल गया। हेलो। हाँ मीटिंग हुई। कहाँ डिनर कराओगी? ओके ठीक। नहीं भाई भूखा प्यासा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जी सोहराबी साहब ओके, देखो मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज।
क्या हुआ?
चोर पकड़ा गया।
सच कह रहे हो?
और क्या, हलाल माल वापस ही आता है भाई।
खुदा का शुक्र। मिठाई खिलाना बोलना।
जरूर मिठाई खिलाऊंगा सोहराबी, मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा।
अब क्या कहूं कहूं।
सलामत रहे। अम्मी अम्मी कहाँ है अम्मी?
अरे बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए?
पता नहीं क्यों आज मेरी तबीयत खराब हो रही है।
क्या हुआ है बेटा?
खुदा जाने, लगता है ब्लड प्रेशर लो हो गया है।
बचपन में जब स्कूल नहीं जाना चाहते थे तो बिल्कुल ऐसे ही करते थे,
लेकिन आज लगता है रोजे की वजह से हालत हो गई है।
बेटा हमने रोजा रखने के लिए तो जबरदस्ती नहीं की है।
मैंने कब कहा कि आप लोगों ने जबरदस्ती की है? आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी?
खुदा का शुक्र अब तक 10 बार अपने बाप के क्लिनिक पर जाके चेकअप करा चुके, कुछ नहीं है तुम्हें।
हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं अम्मी। अब्बा से बात की?
ठीक है बात कर लूंगी। तुम जाकर जरा सो लो, इफ्तार के लिए मैं तुम्हें खुद जगा दूंगी, बाबा भी तुम्हारे आ जाएंगे।
ठीक है जाता हूँ, लेकिन जल्दी मुझे जगाइएगा, आज मेरा ब्लड प्रेशर काफी लो है, मुझे तो सोने से भी डर लग रहा है। आप खुद आके मुझे जगाइएगा।
हिसाम फिर शुरू कर दिया।
आए, 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 आए। हेलो यस्मान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। नहीं भाई सो नहीं रहा हूँ, ये सोने का कौन सा वक्त है? 8 बजे। ठीक है ठीक है, इफ्तार वहीं करूँगा। ठीक है खुदा हाफिज़। अम्मी टाइम क्या है?
समझ साथ है।
अरे बाप रे, मैं रात के खाने पर नहीं रहूंगा। यासमन हमारी आइंदा जिंदगी के बारे में बात करना चाहती है।
क्या हो गया, कोई खास बात है बेटा?
नहीं अम्मी, मुस्तकबिल में पेश आने वाली मुमकिन सूरत हाल की एक लिस्ट तैयार की है, मेरी राय जानना चाहती है।
मैं पूछना चाहता हूँ वो मुमकिन सूरत हाल क्या है?
अरे कुछ नहीं, कुछ फजूल सी बातें। मिसाल के तौर पर अगर जलजला आ जाए, घर गिर जाए, तो दोबारा घर बनने तक हम कहाँ रहेंगे? उसके माँ बाप के साथ या यहाँ करेंगे?
ये कैसा सवाल है पूछने के लिए?
और तो और ये सुने, उसका एक सवाल यह है कि अगर मैं, यासमन और हमारा बच्चा तीनों समंदर में हो और तूफान आ जाए, तो मैं पहले किसे बचाऊंगा, खुद को, बच्चे को या फिर यासमन को?
तो फिर जनाब आली ने क्या जवाब दिया?
असल में ये जहन को भटकाने वाले सवालों की तरह हैं जो क्विज में पूछे जाते हैं, जिसका हर जवाब गलत और सही दोनों हो सकता है। मैं जो भी जवाब देता, 10 दिनों तक यासमन मुझसे नाराज रहती। मैंने भी कहा कि ऐसी हालत में चूंकि किसी का इंतखाब सख्त होगा, इसलिए मैं खुद ही डूब मरूंगा।
बेटा इफ्तार के लिए यासमन को यहीं बुला लेते हैं।
नहीं अम्मी, कल रात तो उन सबसे मिलना ही है, और फिर मैंने उससे कह रखा है कि आप बीमार हैं।
ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारी अम्मी तो बिल्कुल सही हो साली में, फिर क्यों ऐसी बात कही?
कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रोब पड़ेगा यासमन पर, वो सोचेगी कि मेरी माँ इतना उसे पसंद करती कि बुखार की हालत में भी उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गई।
हिसाम,
इफ्तार हो गया, मैं रोजे से था। अम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे क्या भाई आप लोग करते हैं।
मैं क्या कहती बेटा तुमसे?
अरे मुझे खाने पीने से रोकती, मैं 25 साल का हो चुका हूँ, 5 बरस का नहीं हूँ जो आधा अधूरा रोजा रखूं।
चलो ठीक है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अनजाने में ऐसा किया, कोई बात नहीं।
तो फिर एक प्लेट कबाब भी खा लेने थे फिर बताते। भाई आप लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत हो गया।
देख रहे हैं डॉक्टर साहब?
क्या बताऊं, अब क्या कहूं, आप ही का बेटा है ना। हिसाम बेटे।
जी अब्बा।
एक मिनट इधर आओ बेटे। ये वो पैसे जो अम्मी से मांगे थे। बेटे मैं चाहता हूँ कि अब जब भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो खुद मुझसे कहो, लेकिन खुदा के लिए हमारी बेइज्जती ना करो, इस तरह से लोगों से झूठ मत बोला करो, बस।
ठीक है अब्बा, आप बहुत अच्छे हैं, आपने इस पैसे से मेरी ससुराल में इज्जत रख ली।
जाओ बेटा।
हिसाम बेटा ये किसका है?
अरे ये कहाँ था?
गंदे कपड़ों की टोकरी में।
अरे अच्छा हुआ वॉशिंग मशीन में नहीं डाला। भाई ये बेचारा बहुत गरीब है, दुआएं देगा, कुछ दवाएं लिख दीजिए इसके लिए।
तुम ये क्या कह रहे हो, कैसे दवाएं लिख दूं? मैं बीमार को देखे बगैर कैसे दवाएं लिख सकता हूं?
अरे कुछ विटामिन की गोलियां और टॉनिक वगैरह लिख दें, बस 60 बरस के ऊपर के लोगों की यही बीमारी होती है, बेचारा वो कैसे करता रहता है।
मैं बीमार को देखे बगैर दवाएं नहीं लिख सकता।
अरे तो मैं चाह रहा था कि रमजान में आप जरा सवाब कमा लें। कोई
मेरे लिए सवाब और गुनाह की फिक्र न करो, मुझे मालूम है कि तुमने उसकी दवाओं की पर्ची गायब कर दी है जो अब मुझसे दोबारा लिखवाना चाह रहे हो।
गुम हो गई है?
हाँ।
मैंने गुम कर दी? मैं दुनिया भर की चीजें ढूंढ लेता हूँ, अब आपको लग रहा है कि मैंने गायब कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया, हम चले, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
बाय।
अच्छा ये बताओ मर्जिया, हम दोनों 40 बरसों से साथ रह रहे हैं, एक बार भी तुम्हें याद है कि मैंने कभी झूठ बोला हो? हाँ
जानती हूँ क्या कहना चाहते हैं आप।
पता नहीं क्यों ये लड़का मामूली चीज के लिए भी झूठ बोलता है, अब इसकी क्या वजह है ये तो खुदा ही जाने। कभी कभी तो सोचता हूँ कि कहीं हम लोगों से तो कोई कोताही नहीं हो गई है। खुदा गवाह है मुझे याद नहीं है कि इस बच्चे के सामने मैंने कभी झूठ बोला हो या गलती की हो।
मैंने भी कभी झूठ नहीं बोला, न ही कोई गलती की, लेकिन पता नहीं क्यों ये इतना झूठ बोलता
है। पता नहीं क्यों जिद है उसे, जो हर एक से कहता फिरता है कि रोजे से है या अम्मी बीमार हैं। झूठ बोल बोलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है, हर एक को चक्कर देता है। वो बेचारी यासमन पता नहीं कैसे उसके साथ जिंदगी गुजारेगी। हाँ किस उम्मीद पर, मतलब कोई वजह भी नहीं होती उसके पास झूठ बोलने की, लेकिन फिर भी बोलता है जैसे कोई बीमार हो। अगर कोई न जाने तो यही सोचेगा कि हम उससे घर में जबरदस्ती करते हैं कि ये रोजेदारों की एक्टिंग करता फिरे, ये बहुत गलत है।
कल रात उसके कमरे के सामने से गुजर रही थी, वो यास्मीन से बात कर रहा था, फोन पर उसे ये बता रहा था कि उसकी बहन किस तरह उसकी आंखों के सामने समंदर में डूब गई।
बहन? कैसी बहन?
अरे झूठ बोल रहा था, पता नहीं क्यों ये हर एक को यूं ही बेवकूफ बनाना चाहता है।
कहाँ? इस तरह से मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते?
इस तरह से तुम वादे निभाना चाहते हो?
अरे ठहरो, ये ना पूछा के कहाँ थे, ये ना पूछा के देर क्यों हो गई, बस ऐसे ही दादी अम्मा की तरह अचानक उठकर चली जा रही हो।
अगर पहली बार होता तो पूछती भी, लेकिन मुझे याद नहीं कि आज तक कभी एक बार भी तुम टाइम पर पहुंचे हो।
बदकिस्मती से हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है।
हाँ जानती हूँ, कभी बैग छिन जाता है, कभी गाड़ी चोरी हो जाती है, कभी तुम्हें अगवा कर लिया जाता है, और कभी तुम्हारी अम्मी किसी बहाने अस्पताल पहुंच जाती है। हर बार कोई ना कोई बहाना, और फिर दो मिनट बाद भूल जाते हो।
यास्मन, एक बार जरा मेरी आंखों में देखो, खुदा के लिए देखो, तुम तो मेरी जिंदगी हो। मैं चाहे जिससे भी झूठ बोल लूं, तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूं? जिसके साथ जिंदगी गुजारनी हो उससे कैसे झूठ बोला जा सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। हर काम के अपने उसूल होते हैं, ये झूठ बोलने का उसूल है। अच्छा अब चलो बैठते हैं, खुदा के लिए मेरी बेइज्जती हो रही है। चलो, लोग देख रहे हैं, चलो भाई। अरे भाई ये क्या कर रही हो, लो अपने पैसे।
ज्यादा नखरे ना दिखाओ। जानते हो, हमें जमाना और वक्त बनने से पहले एक दूसरे से मिलना चाहिए था।
अच्छा,
तब शायद मुझे तुम पर यकीन होता।
हम यार मंगनी की रस्म तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, वो भी मेरी जबान की वजह से मुमकिन हुआ है, वरना तुम तो अब तक 100 बार नाराज होकर अपनी अम्मी के घर जाकर बैठ चुकी होती। मैं पीछे पीछे दौड़ता ही रहता। अच्छा कैसे लगता अगर तुम्हारे दरवाजे पर आवाज लगाता? यासी, यासी।
अच्छा इफ्तार किए?
इफ्तार का मौका ही कहाँ मिला, तुम परेशान इतना करती हो।
मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, चलो शुरू करते हैं।
बिल्कुल। पता नहीं रमजान में मुझे इतनी भूख क्यों लगती है। अच्छा ये नहीं पूछोगी कि क्या हुआ था जो इतनी देर हो गई मुझे?
क्यों नहीं, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि इस बार क्या कहोगे।
गली से शॉर्टकट मार रहा था जल्दी पहुंचने के लिए, तभी मेरी नजर दो लोगों पर पड़ी जो बुरी तरह से लड़ रहे थे। गली में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ऐसे ही गुजर जाना अच्छा नहीं है। गाड़ी किनारे लगाई, एक रॉड निकाली, उनके पास पहुंचकर ऐसी दहाड़ लगाई कि दोनों चौंक गए, मेरी तरफ मुड़े और हैरत से मुझे देखने लगे। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि गली के दूसरे सिरे से एक आदमी ने कहा कट। मैं समझ गया शूटिंग हो रही थी। फिर क्या था, मेरे चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सेट के दूसरे लोगों ने मुझे घेर लिया। डायरेक्टर आया, मुझसे हाथ मिलाया और कहने लगा शाबाश, तुम्हारे जैसे नौजवानों की मुल्क को जरूरत है, बड़ा काफी मशहूर डायरेक्टर है। बहरहाल बातचीत होती रही। बस मुख्तसर ये समझ लो कि तुम्हारे होने वाले मियां अब स्क्रीन टेस्ट के लिए जाएंगे, उसकी अगली फिल्म के लिए।
तुम सच कह रहे हो?
हाँ तुम्हारी कसम। यसे अब ध्यान रखना अपने होने वाले मियां पर, ज्यादा तवज्जो दो, कल मशहूर हो गया तो फोन का जवाब भी मुश्किल से मिलेगा।
दांत तोड़ के रख दूंगी, इतना बकवास नहीं करो।
मैं तो अपने देर से आने की वजह बताना चाह रहा था, सॉरी डियर जो देर हो गई।
सोच कर बताऊंगी कि मैं माफ कर सकूं या नहीं।
ठीक है यासी मैडम, जैसी आपकी ख्वाहिश। गाड़ी नहीं लाई होती तो मैं ही तुम्हें पहुंचा देता।
फिकर ना करो, वो दिन भी आएगा और ऐसा आएगा कि फिर टैक्सी के पीछे दौड़ोगे।
अरे अरे ऐसा नहीं होगा, मैं शादी इसीलिए तो कर रहा हूँ कि अपने बच्चों की माँ का ड्राइवर बन जाऊँ।
बेशरम कहेंगे।
अच्छा ये तुम्हारे मामू जान अगर कल ओके कर दे तो सब ठीक है ना?
हाँ।
फंसाने की कोशिश तो नहीं करेंगे ना मुझे?
खुदा करे।
थक गया हूँ मैं, 6 महीने से इन लोगों ने हमें रोक रखा है। अरे भाई खत्म करो, मैं अपनी बीवी को लेकर घर जाऊँ।
देखिए जो हमारे मामू जान है ना, सारे रिश्तेदारों में इन्हीं की चलती है, अगर वो ओके कर देंगे तो मसला हल।
कल देखना क्या करता हूँ, ऐसा मुरीद बनाऊंगा अपना कि देखती रह जाओगी, लेकिन डरता हूँ कि कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। उनके लड़की वड़की तो नहीं है ना?
सीधे से जाओगे या फिर झगड़ा शुरू कर दूं?
नहीं 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 झगड़ा नहीं, बस अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मम्मी, मम्मी, मॉम, मामा,
मुझे पता नहीं तुम में क्या
बाय।
बाय।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम अर्ज़े डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना?
तुम्हें शर्म नहीं आती?
अब क्या हुआ,
ये तुम क्या करते फिरते हो?
ऐसा मैंने क्या कर दिया?
खुदा की कसम, बुरी बात है, गुनाह है, बदतमीजी है, बेअदबी है।
अरे अब्बा, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जो बुरी बात भी है, गुनाह भी है और बदतमीजी भी है?
झूठ
झूठ, मैंने कब झूठ बोला है? मौत में कितने दिन है? 1, 2, 3, 4।
बस करो, तुम इस तरह की हरकतों से अपनी भी बेइज्जती कराते हो, मेरी भी।
अरे अब्बा जान, आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि हुआ क्या है?
अब तुम्हारा क्या करूं, मैं आज मुद्दतों बाद तुम्हारी अम्मी के साथ इफ्तार के बाद चहलकदमी को निकला था, तभी निराकी साहब नजर आए, दौड़ते हुए मेरे पास आए, सलाम दुआ की और हाल अहवाल पूछा, फिर मुझसे कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं निराकी हूं, मुझे आप पहचान रहे हैं ना?
अच्छा, अजीब आदमी है, लगता है उनका दिमाग खराब हो गया है।
दिमाग तो तुम्हारा खराब हुआ है, तुमने क्यों उनसे कहा कि मुझे अल्जाइमर हो गया है? इतना झूठ क्यों बोलते हो? अगर इसकी वजह बता दो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा।
अच्छा याद आया, अब्बा मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया था।
किस लिए?
सोचा कि आपको पार्क में देखेंगे तो जरा हंसी मजाक हो जाएगा।
ये तुमसे किसने कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाकर तफरी की जाती है?
माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि मामला इतना संजीदा हो जाएगा।
ये रही आज की बात, और सारे झूठ का क्या? झूठ सिर्फ मजे के लिए बोलते हो?
जी अब्बा, आपके बकौल ये तो रही इसकी बात, लेकिन झूठ बोलने के कई उसूल होते हैं अब्बा जान। एक वजह झूठ की तो यह है कि लोगों में सच सुनने की ताकत नहीं होती। मिसाल के तौर पर आज की बात लें, एक प्रोजेक्ट था जिस पर काम करने का मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन अगर सोराबी को बता देता तो मुझे फौरन कंपनी से बाहर निकाल देता, इसीलिए उससे कहा कि चोर मेरा बैग मार ले गया। वो बेचारा इतना परेशान हुआ कि 1 घंटे बाद तक फोन करके खैरियत पूछता रहा। लोग चाहते हैं कि उनसे झूठ बोला जाए, किसी का दिल सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता।
तुम क्या कह रहे हो, लोग सच सुनना पसंद नहीं करते, झूठ बोलते हो उसके बाद दुनिया भर की बातें बनाते हो? तुम में अब भी बचपन की सारी आदतें मौजूद हैं। मैं कभी भूल नहीं सकता कि इंटरमीडिएट पूरा करते करते तुमने हमारी क्या हालत बना दी। 1000 बार मुझे और अपनी माँ को मारकर कब्र में दफना दिया, 10 बार फातिहा खानी और 40वां किया। जरा सी कोई बात होती तो तुम फौरन कह देते कि अब्बा का इंतकाल हो गया है, होमवर्क नहीं कर पाया, अम्मी की बरसी थी इसलिए नज्म याद नहीं कर पाया। याद है
तरीका कारगर रहा ना, मैंने इंटर भी पास कर लिया और आप भी जिंदा सलामत हैं।
तुम उसे कारगर तरीका कहते हो? इतने सारे स्कूली दोस्तों में से कोई एक भी तुम्हारे साथ है? हाँ, कभी तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त नहीं रहा है, जानते हो क्यों? क्योंकि कोई भी झूठे के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करता। बस
ठीक है, इसके बदले में मैं रास्ते पर तो लग गया ना।
फिर फजूल की बकवास कर रहे हो, ये जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
देखिए अब्बा, झूठ तो सभी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग माहिर होते हैं झूठ बोलने में, जैसे मैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते। मैं झूठ बोलता हूँ क्योंकि ये जरूरी है, इसी झूठ की वजह से आज यासमन जैसी मालदार और अच्छी लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। खुदा जानता है अब्बा, वो हर रोज खुद से 100 बार ये सवाल करती है कि हुसाम में क्या बात है जो मुझे पसंद आ गया। असल में उसे पता ही नहीं कि ये झूठ है जो उसे पसंद आ रहा है। मैं झूठ बोलता हूँ सबसे, आपको छोड़कर, मैं माहिर भी हूँ इसमें, गड़बड़ नहीं करता बिल्कुल भी, आप उतना ही।
लेकिन ये काम गलत है, हर हाल में गलत काम है ये बेटे।
तो ठीक है दोस्तों, बातें तय हो चुकी हैं और अब इसी के मुताबिक कल से काम शुरू करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जनाब।
सोराबी,
सोराबी जी जी, मैं एक नए काम के लिए यहाँ आया हूँ। जानता हूँ गलत मौका है, मीटिंग चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि आप माफ करेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा ये लड़का
है? जी हाँ।
मेरा ये लड़का आपकी गुलामी में आना चाहता है, आपकी बहन के लिए। जी जी, मेरा बेटा बहुत बड़ा फनकार है, बहुत से गुर आते हैं इसे, वो जो हमारे घर का तहखाना है ना, उसमें इसने बहुत से फन बारे तकलीफ किए हैं, वहाँ वो अपने फन का सर मुजाहिरा करता रहता है। हाँ खुशी बेटे,
जरा अपना फन दिखाओ ना।
वन टू थ्री फोर, मैं आया शादी का रिश्ता लेकर, अपना दिल हथेली पर रखकर, मेरी मंगेतर है कहाँ, सुबह शाम उसके दर पर, मैं आया उसे लेने, अपनी बहन की शादी कर दे मुझसे। अपनी बहन की शादी मुझसे करेंगे?
आपकी बहन रिश्ता मांगना चाह रही है, मुझे भेजा था आपकी बहन का रिश्ता मांगने के लिए।
खुद पागल है, उससे भी निपट लूंगा।
अरे तो इसमें मेरा क्या
दिखाना,
लड़ाई कर रहे हैं आप, मैं तो बेकसूर हूँ, आप ऐसे खिलावजा मुझ पर नाराज होने जा रहे हैं, ये क्या बात है? इस तरह की चीजें बात करते हैं, इस तरह किसी के साथ लड़ाई करते हैं, ये तो आपका रवैया बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मैं इसमें मेरे इसमें क्या, अरे 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 अरे, हाय मैं मर गया, अरे मेरा बेटा बेहोश हो गया, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, अरे जल्दी करो मेरा बेटा बेहोश हो गया
है।
बैरंग साहब, आज यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, माफी चाहता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, सोहराबी साहब को अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था।
कोई बात नहीं।
अच्छा तो हमारा काम कहाँ तक पहुँचा?
पारसा साहब, मैं काम के लिए नहीं आया था।
क्यों, कुछ हो गया क्या?
देखिए, मैंने बहुत सोचा, आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे पहले आपको अपने डिप्रेशन के लिए कुछ करना चाहिए।
कैसा डिप्रेशन?
तलख माजी, नाकाम शादी, तलाक, बेटे की जुदाई और सबसे बड़ी बात खुदकुशी।
अरे मैं इस मरहले तक आपको बता चुका हूँ।
मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ।
देखिए इंजीनियर साहब, मेरी सबसे बड़ी मदद ये होगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें।
हिसाम पारसा, तुम हमेशा के लिए मेरी कंपनी से बाहर हो, निकल जाओ यहाँ से।
देखा आपने, आपकी नौकरी तो हाथ से जा चुकी है।
शायद मैं अपना काम बदल दूं।
आखिर तुम ये शादी होने दोगे या नहीं, या ये चाहते हो कि हम वहां रिश्ता लेकर जाएं और वो लोग हमसे कहें कि चूंकि आपका लड़का भी रोजगार है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे?
अब्बा, इंसान ऐसे ही हसास मौके पर बड़े बड़े फैसले करते हैं।
ला हौल वला कुव्वत, हम फजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अभी तुम्हारी शादी का वक्त ही नहीं है।
चले ठीक है अब्बा, मैंने तो यूं ही एक बात कहती, आप संजीदा क्यों हो गए? मैं सोहराबी के साथ काम नहीं कर सकता, बेवकूफ है, लाउबाली है, लापरवाह है, और फिर क्लाइंट भगा देता है, बात करनी ही नहीं आती, मातहतों पर जुल्म करता है। आज वो बेचारे जवाब साहब है ना, वॉचमैन, उनकी पिटाई कर दी कि उन्होंने सलाम नहीं किया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उन्हें रोका, कहा कि अगर तुम्हें भी रोजाना सात मंजिला इमारत की सफाई करनी पड़े तो तुम भी सलाम करना भूल जाओगे।
उस बूढ़े के लिए दवाएं भी लिख दी मैंने।
बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं सोहराबी के साथ काम नहीं कर सकता।
तुम फिर वही बात कर रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ
बता दूं?
हाँ बताओ, अगर बता दोगे तो अपनी अम्मी और अब्बा पर मेहरबानी करोगे।
ठीक है बताता हूँ। सोहराबी चाहता है कि मैं उसकी बहन से शादी कर लूँ, वो मुझसे 18 साल बड़ी है।
ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमसे बड़ी है तुम्हारा ख्याल रखेगी, झूठ बोलना भी छुड़ा देगी, क्या बुराई है?
क्या, खुदा खैर करे, आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं तो डर गई थी।
क्या नौबत आ गई है, मेरे घर वाले भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते।
उसकी वजह भी तुम खुद ही हो।
चलो चलें, देर हो रही है।
कह रहा हूं कि मेरी अपनी इज्जत है, उन लोगों में बैठकर फजूल में झूठ बोलना शुरू न कर देना।
अरे अब्बा, और हाँ मैं अभी से कह रहा हूँ कि सोहराबी के साथ काम नहीं करूँगा। ओके,
जहन्नम में जाए तुम्हारा ओके।
एक ही कलर का सूट ना होता तो प्रॉब्लम थी क्या?
ला हौल वला कुव्वता, इस सूट के पैसे मैंने दिए हैं, समझे?
उफो, बस भी करें, चलिए।
अस्सलाम वालेकुम, मैं पारसा हूँ जनाब।
कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं?
मुझे क्या मालूम,
न लड़की है और न ही उसकी माँ, मामला क्या है?
अभी आती होगी।
नहीं नहीं, लड़की है और न ही उसकी माँ, आखिर मामला क्या है?
ठहरो, अभी आती होगी।
माफ कीजिएगा नजफी साहब, यह आसमान और आपकी अहलिया नहीं आएंगी?
जी नहीं, वो तेहरान में नहीं है, हमने उनको बाहर भेज दिया है।
बाहर?
लेकिन नजफी साहब, मेरे ख्याल में आसमान ने खुद ही हमें दावत दी थी।
जी जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं।
तो फिर अब क्या होगा, मतलब वो क्यों नहीं है यहाँ?
कल कल था और आज आज।
लेकिन वो अभी यहाँ क्यों नहीं है?
आपने सुबह से अब तक यासमन से बात की है?
एक दो बार फोन किया था लेकिन राबिता नहीं हो पाया, सोचा शायद ब्यूटी पार्लर में होगी।
तुमने गलत सोचा है, मैंने उसको बाहर भेज दिया है ताकि तुम्हारी बात उसके ज़हन से निकल
जाए।
क्या
हुआ?
माफ कीजिएगा नजीफ साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई बात हो गई है?
बहुत कुछ हुआ है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप तो नेक आदमी हैं, सब आपको जानते हैं, अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का मुस्तकबिल खराब करने पर कैसे तैयार हुए?
मैंने? भाई साहब, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं।
लेकिन आपने ऐसा किया, मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ किया ताकि इसका इलाज हो सके और ये दोबारा सेहतमंद हो जाए।
नजफी साहब माफ कीजिएगा, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, मेरे बेटे को क्या हुआ है कि वापस?
डिप्रेशन, ज़हनी बीमारी, पागलखाना, और बताओ।
नजफी साहब माफ कीजिएगा, जरा ठीक से बात कीजिए।
तुम बीच में मत बोलो जी। जी कहिए।
मामूजान, मामूजान।
अरे वाह भाई वाह, इंजीनियर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
देखिए एक गलत फहमी हो गई है नजफी साहब, मैं पूरी बात बताता हूँ, माफ कीजिएगा।
माफ कीजिए, एक मिनट।
या?
अरे बाप रे, मैं भी कितना बेवकूफ था, पलाओ मामू जान का, ये आपके लड़के को बेहतर तौर पर जानने के लिए कंपनी गए थे क्लाइंट बनकर, आपके साहबजादे ने भी अपनी सारी दास्तान इनसे बयान कर दिया कि शादी हो चुकी है, बीवी भाग गई है, खुद कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं, कई महीने पागल खाने में भी गुजार चुके हैं, मतलब कोई ऐसी कमी नहीं है जो माशाल्लाह इनमें ना हो, और आप लोग भी इसके हकीकी माँ बाप नहीं है।
ये फजूल बकवास तुमने की है इनसे?
बहुत चालाक बनते हो ना।
मैंने झूठ बोला था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। उफ।
आवाज ना निकले, जो कह दिया वही होगा, जब इंसान बन जाओगे तब घर में कदम रखना। चलो आओ बैठो, चलते हैं, पता नहीं कैसी औलाद की तबीयत की है।
जवाब दो यासमन, प्लीज जवाब दो, खुदा के लिए फोन उठाओ यासमन, बर्बाद हो गया मैं। हेलो, अब तुम क्या कह रहे हो सोहराबी, हार पैर जोड़ोगे तब भी मैं वहां नहीं आने वाला, समझे बात? समझे?
वापस बुलाने चाहता,
कभी ना देखा,
बस ये कहना चाहता हूँ कि वो फाइल जिसे तुम्हारे बकौल छोड़ ले गए थे, तुम्हारी इमेज की दरअसल मिल गई है। तुम बहुत बेशर्म और झूठे इंसान हो।
हाँ हाँ हाँ, मैं झूठा हूँ, मैं सबसे झूठ बोलता हूँ, हाँ झूठा हूँ। हाँ
झूठ पुरानी तलवार की तरह होता है, जो शायद फौरन न काट पाए लेकिन हर हाल में तलवार है। देखा अपना मुस्तकबिल किस तरह से तबाह कर लिया तुमने।
हिसाम तुमने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती।
قبل از